اللہ اکبر، دیکھتے ہیں آج کی آیات. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اس وقت فیملی لاز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور فیملی لاز کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ ہم کوئی مفتی تو ہیں نہیں جنہوں نے کہیں بیٹھ کے کوئی فتوے دینے ہیں کسی کورٹ میں، طلاق کے یا یہ خلا کے، اس طرح کی تو ہم نے کوئی کام نہیں کرنا. تو ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ معاملات ایسے ہیں جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کورٹ کچہریوں کے معاملات ہیں، گھروں سے ان کا کیا تعلق، مجھے جاننے کی کیا ضرورت، نہ میرا کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، الحمدللہ اپنے گھروں میں سب ٹھیک رہ رہے ہیں سب. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جہاں پہ نکاح ہے وہاں طلاق کے مسائل جاننا بھی ضروری ہے. اور اسی کی لا علمی کی وجہ سے آج اس قدر مسائل ہیں کہ آپ اگر اسکالر سے پوچھیں یا کوئی علم والوں سے آپ پوچھیں تو پتہ چلے گا کہ کتنے ان کے پاس اس قسم کے پرابلمز آئے دن آتے ہیں. ہر ایک کی فیملی میں، ہر ایک کے جاننے والوں میں، کہیں فرینڈز میں، کہیں کچھ اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، اور بعض کے گھر میں خود ایسے مسئلے ہوتے ہیں، اپنے بچوں میں کہیں ایسے مسئلے آ جاتے ہیں. اس وقت کیا کرنا ہے؟ کچھ پتہ نہیں جب ہوتا نا تو الٹے سیدھے کام کیے جاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی بھی لی جاتی ہے، اپنے آپ پر گناہ بھی کمایا جاتا ہے، اور معاملہ بھی صحیح نہیں ہوتا انصاف والا. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں نا، ان میں اصل میں انصاف ہے سب کے لیے. اللہ تو سب کا ہے، مرد کا بھی ہے، عورت کا بھی. کوئی عورتیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مرد نہیں کہہ سکتے کہ عورتوں کو سارے حقوق دے دیے گئے، ہم سے زیادتی ہوئی ہے. نہیں، کیونکہ وہ رب سب کا، اس نے ہی سب کو پیدا کیا ہے نا. وہ کوئی یہ نہیں کہ وہ اس کا ساتھ دے گا یا اس کا ساتھ دے گا، اور میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اسلام، کیوں آپ کے ساتھ کرے گا؟ تو پہلے تو ایسی باتیں ذہن سے نکال دی جائیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارے ساتھ آتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ بیسٹ جانتا ہے کہ کیا چیز ہے جس میں ہمارے لیے بہتری ہے. صحیح. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھا تھا، تھوڑا سا ذہن میں اس کو دہرا لیں تاکہ انشاءاللہ آگے آسانی ہو پھر اور باتیں سمجھنے. پہلی ہم نے بات لاسٹ ٹائم پڑھی تھی. دیکھیں، پہلے بات نکاح سے شروع ہوتی ہے، تو پہلے ہمیں بتایا گیا کہ کہاں پہ نکاح کر سکتا ہے انسان، کہاں نہیں کر سکتا. عورتیں تو کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ نکاح، یعنی چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ ایتھیسٹ، کچھ بھی ہے، وہ صرف اور صرف مسلمان کے ساتھ کر سکتی ہے. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی. اور مرد کے لیے اہل کتاب کے ساتھ کر سکتے ہیں، مگر وہ کن حالات میں کر سکتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کے وہ حالات ہیں یا نہیں ہیں. اور غیر مسلم یعنی جو اہل کتاب کے علاوہ، یہود و نصارہ کے علاوہ، ان کے لیے تو بالکل بتا دیا گیا یہاں پہ کلیئرلی کہ ان کے ساتھ بالکل شادی نہیں کی جا سکتی. اور اسی آیت کے اینڈ میں اس کی وجہ بھی بتا دی، کیا وجہ ہے کہ نہیں کی جا سکتی. کوئی پوچھے آپ سے کیوں نہیں کریں ہم، کیوں ہماری تو مرضی جدھر مرضی ہم کریں، تو وجہ بتا دی گئی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں حیض کے مسائل پتہ چلے کہ حیض عورت کے لیے کتنی بڑی ایک تکلیف کی چیز ہے، ایک مشکل کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کی وکالت کی ہے کہ حیض اس کے لیے اذیت ہے، اس کے لیے تکلیف ہے. تو آج تو سائنس نے نکال لیا کہ پیریڈز میں عورتوں کے اوپر کیا کیا ان کی ایموشنلی اور ان کی فزیکلی ان کے اوپر کیا گزرتی ہے. جب نہیں بھی سائنس تھی تب اللہ کے قرآن نے بتا دیا مردوں کو. اور جب اللہ نے ریلیف دی عورت کو کہ وہ نماز نہ پڑھے، تو دوسروں کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے کہ ایسے حالات میں عورت کو رعایت دے اور اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جائے. پھر بتا دیا گیا کہ مرد ایسے وقت میں عورت کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ نہ کرے، اور اس کی میں نے آپ کو حدود بھی بتا دی کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. اور اللہ کن کو پسند کرتا ہے؟ جو پاک صاف رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس ریلیشن شپ کو، جو بہت انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، اس کو کس سے تعبیر کی، کس سے مشابہت دی، تشبیہ کس سے دی گئی؟ ایک حرف سے. اور اس میں بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ حرف سے کیوں تشبیہ دی گئی اور وہ کتنی قیمتی چیز ہے. پھر اس کے بعد قسموں کی بات آئی کہ قسم، اللہ کی قسمیں کھا کھا کے، اللہ کا نام بیچ میں لا لا کے، جھوٹی قسمیں یا ایسی قسمیں جو اس میں نیکی سے رک جانے کی بات ہو، یہ مت کرو. اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلا कि जो लहु कस्मे है उनके ऊपर कोई नहीं मुआवजा होता। और फिर हमें इला का पता चला, इला क्या चीज होती है, जब आदमी कसम खा लेता औरत के करीब ना जाने की। और फिर हमने देखा कि जो लास्ट आयत हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी वो थी कि तलाक याफ्ता औरत उसकी इद्दत कितनी होती है। इद्दत मतलब वो टाइम पीरियड जिसमें उसको वेट करना है, वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती। और इसकी हिकमत क्या है? नंबर वन, इसकी हिकमत ये है कि अगर उसके पेट में कोई बच्चा है, प्रेगनेंसी है, तो वो जाहिर हो जाए, ठीक है। अदरवाइज देखिए वो कहीं और जाके अगर शादी कर लेती है, अभी पता ही नहीं है प्रेग्नेंट है या नहीं, ठीक है, कहीं और चली गई और शादी कर ली, अगले महीने ही कर ली, तो क्या होगा? जो नसब है उसके अंदर मिक्सअप होने का खतरा है, पता नहीं चलेगा कि बच्चा किसका था, ये दूसरे शोहर का है कि पहले का। दूसरा, नंबर टू, इसकी क्या हिकमत है कि ये एक ट्रॉमा होता है औरत के लिए भी, किसी आदमी के साथ इतना अरसा रही है और अब उसको दूसरे के पास जाना हो, तो उससे पहले उसको टाइम दिया गया कि इतनी जल्दी ना की जाए, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है कि औरत के लिए मेंटली भी उस चीज से निकलना उसमें टाइम लगेगा, तो उसको वो टाइम दिया गया। नंबर थ्री, इसके अंदर ये है कि आदमी को ये टाइम दिया गया कि उसके अंदर अंदर वो औरत को रिटर्न कर सकता है, वापस ले सकता है, रुजू कर सकता है। तो इसमें बहुत सारी हिकमतें, और ये वो वाली तलाक की बात की जा रही है जिसमें औरत को वापस लिया जा सकता है, और वो कौन सी तलाक है वो भी हम आज इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। मगर अभी आपने ये लिख लिया होगा कि रजई तलाक, यानी जो रिवोकेबल तलाक है जिसमें रिटर्न हो सकता है, काबिले वापसी तलाक समझ लें, जिसमें वापसी हो सकती है, तो ये टाइम पीरियड उस औरत को लिए रखा गया ताकि आदमी सोच समझ ले, और उसके बाद अगर वो समझता है कि उस वक्त उसने गुस्से के अंदर तलाक दे दी थी तो अब वो उसको वापस कर। और फिर हमने हकूक की बात की थी कि औरतों के भी हकूक हैं, जैसे उनके ऊपर फराइज हैं, और लेकिन मर्द को एक दर्जा हासिल है उनके ऊपर, क्योंकि उसके पास रुजू का हक है, उसके पास तलाक देने का हक है। आज हम और इसके ऊपर बात करेंगे, और बहुत जरूरी हैं ये बातें, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ से ताल्लुक रखती हैं। हम अपने इर्द गिर्द ऐसी बातें सुनते हैं और उल्टे सीधे हम भी मशवरे देते हैं जब हमारे पास इल्म नहीं होता। अल्लाह ताला किसी के घर में भी ऐसे मसले ना लाए, लेकिन आप देखें कहीं ना कहीं आप मशवरा देने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं आप किसी को बताने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं आप किसी को नसीहत करने वाले होते हैं। तो आपको भी पता होना चाहिए कि अल्लाह के कानून में क्या चीज है जो इसमें जायज है और क्या नहीं है जायज, ठीक है। और आजकल तो जिस तरह का रेट चल रहा है तलाक का, उसमें भी ये मसाइल जानने बहुत जरूरी है। आप सबको पता होगा कि ये रेशो कितनी बढ़ गई है हमारे मुसलमानों में भी अब, तो क्या इसके अहकाम है। नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तलाकु मर्रतैन, तलाक दो मर्तबा है। मर्रतैन की क्या मतलब होता है? वाहिद इसका मर्रतुन है, तस्निया इसका मर्रतैन है, यानी दो मर्तबा। दो मर्तबा मतलब है दो अलग अलग टाइम, दो तलाकें एक वक्त नहीं बल्कि दो अलग अलग टाइम में दी गई तलाकें। इसलिए कि जैसे आप इसको ऐसे ही समझें कि मसलन मैं आपको $20 दूं, तो मैं पहले 10 दूं और फिर 10 दूं, इसको आप कहेंगे आपने मुझे दो मर्तबा दिया, या मैं आपको एक दफा दूं और फिर कभी और जाके कुछ दिन बाद एक और दफा दूं, तो आप कहेंगे आपने मुझे दो बार दिया है, उसको दो बार कहते हैं, या जो मैं आपको $20 एक ही साथ पकड़ा रही हूं कि पहले एक आपके हाथ में रखा फिर दूसरा कहा, उसको कहेंगे आप उसी को कहेंगे ना जिसमें वक्फा है। और इसका आप कुरान पाक में मर्रतुन, मर्रतान, मर्रतैन ये लफ्ज उठा के देख लें तो हर जगह आपको पता चलेगा कि ये डिफरेंट औकात के लिए, एक ही वक्त में कहने के लिए नहीं है, ये लफ्ज ही नहीं है, बल्कि उसके लिए आता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा दियाफाइन का लफ्ज आता है कि दो दो डबल, यानी डबल जब अजर की भी बात आती है तो दो अजर, डबल अजर, ठीक है। और अगर मर्रतान या मर्रतैन की बात आए तो फिर क्या है, दुनिया में अजर और फिर आखरत में अजर। तो यानी टू टाइम्स जो वक्फे वक्फे से हो, यानी डिफरेंट टाइमिंग्स में, एक ही टाइम पे दो दफा, वो कहना का डबल हो गया, लेकिन वक्फे वक्फे से कहना उसके लिए लफ्ज आता है, ठीक है। अब एक आपको बात बता दूं कि जो एक तलाक है या दो तलाकें हैं, इन दोनों के अहकामात एग्जैक्ट सेम है। तो जब भी इन दोनों को हम जब भी बोलेंगे, हम कहेंगे तलाक-ए रजई, क्योंकि इन दोनों में रुजू का हक है, रिटर्न करने का हक है, औरत को वापस लेने का हक आदमी के पास है, ठीक है। तो यहां पे कहा गया कि तलाक सिर्फ टू टाइम्स होती है, यानी रजई तलाक, जो रिवोकेबल तलाक है, जिसमें टर्न बैक कर सकते हैं, जिसमें वापस ले सकते हैं, वो जिंदगी में आदमी के पास सिर्फ टू टाइम्स चांसेस हैं कि वो इस ऑप्शन को ले, इसको अवेल करें। ये क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि इस्लाम से पहले तरीका ये था कि आदमी जिंदगी में कितनी मर्जी तलाके देता जाता था, फिर इद्दत होती थी तो इद्दत खत्म होने लगती थी, रुजू कर लेता था, इससे औरत की जान मुश्किल में रहती थी। तलाक दी, इद्दत गुजरने के करीब आई, मतलब 3 हैज है इद्दत, तो हैज का टाइम खत्म होने लगा तो वो रुजू कर लेता, फिर तलाक दे दी, फिर उसका टाइम खत्म होने लगा, फिर रुजू कर लिया। तो इसकी इस्लाम ने एक लिमिट लगा दी कि इस तरह की तलाकें सिर्फ दो दफा दी जा सकती हैं, तीसरी तलाक के बाद ऐसा नहीं कर सकता आदमी। इब्ने अभी हातिम में कि एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा कि ना तो मैं तुझे बसाऊंगा ना छोड़ूंगा, यानी ना तेरे पास आऊंगा, ना तुझे बसाऊंगा, ना तुझे छोड़ूंगा। उसने कहा वो किस तरह? उसने कहा मैं तलाक दूंगा, इद्दत खत्म होने लगेगी जू ही तो रुजू कर लूंगा, फिर तलाक दे दूंगा, फिर इद्दत खत्म होने लगेगी फिर रुजू कर लूंगा। इस तरह ही चलता रहेगा, यानी औरत ना बेचारी एक शादीशुदा वाली जिंदगी गुजार रही, ना है एक ऐसी जिंदगी गुजार रही है जिसमें वो आजाद हो कि वो किसी और से ही जाके चलो शादी कर ले, तो वो औरत तो लटकी रह गई ना। ये औरत फिर नबी अलैहिस्सलाम के पास आई और अपना ये दुख रोने लगी, उस पर ये आयत नाजिल हुई। तो ये आयत मुबारक नाजिल हुई, और इसके नाजिल होने के बाद लोगों ने फिर इसका ख्याल रखना शुरू कर दिया, और वो संभल गए, उनको पता चल गया कि हमें अब दो तलाकों तक तो हमारे पास इख्तियार है, हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास चांस है कि हम अपनी बीवी को वापस ले लें इद्दत के अंदर अंदर। और इद्दत कितनी बताई थी लास्ट आयत से? सलासा तकरू, 3 हैज, और लेकिन इसके ये गुजर गई अगर तो तब भी नहीं ले सकते, और अगर 3 दफा हमने 3 मुख्तलिफ टाइम्स में हमने तलाक दे दी तो तब भी हम वापस नहीं ले सकेंगे, ठीक है। तो कहा गया कि अत्तलाक को मर्राता है, ये दो तलाक जो हैं ये तो जिंदगी में आदमी के पास चांस है कि वो दो दफा ये तलाक कह सकता है, रजई तलाक 2 ही दफा है, यानी जिसमें वापस ले सकता है वो जिंदगी में 2 ही टाइम है, ये बात को आप जहन में रखिएगा, ठीक है। इमसाकुम बिमारूफिन और तसरीहुम बेहसान, कैसे हमें पता चला कि ये रजई तलाक की बात हो रही? क्योंकि ये आगे का हिस्सा हमें बता रहा है। अब कोई आपसे पूछे नहीं आप कैसे कह सकते हैं रजई तलाक की बात हो, देखिए ये बता रहा है कि फिर, यानी इन दो तलाकों के बाद फिर आदमी के पास ऑप्शन है इमसाकुम बिमारूफ, या तो भाई उसको रोक लो भरे भले तरीके साथ, रोक लो का मतलब क्या, अब फिर बीवी बना लो, अच्छे तरीके से साथ रहो, मारूफ होता है वो जो नोन हो, शरीफाना तरीका, जो सबको पता हो, सब उसको कहें, जो भी सुने वो ये कहे कि नहीं ये बिल्कुल सही है, ये इसी तरह बीवी को रखना चाहिए, इसने सही तरीके से अच्छे तरीके से रखा। आओ या सेकेंड ऑप्शन उसके पास क्या है, तसरीह हम भी एहसान, या फिर उसको छोड़ दो लेकिन कैसे? गालियां दे के, धक्के दे के, इल्जाम लगा के, तोहमतें लगा के, झूठ बयान करके, जुल्म करके, नहीं, भी एहसान, साथ एहसान के। आपको पता है कि इस्लाम में जो हाईएस्ट लेवल है निकी का, वो क्या है? एहसान का लेवल। एहसान खूबसूरती को हुसन से है, बेस्ट तरीके से, यानी बेस्ट बिहेवियर के साथ, हाईएस्ट लेवल ऑफ काइंडनेस के साथ, अरे नरमी, भलाई, अच्छाई का भी टॉप। आपको पता है ना एहसान का क्या मतलब बताया हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि एहसान क्या है? कि तुम ऐसे ही इबादत करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, और ऐसे नहीं कर सकते तो कम से कम ये करो कि अल्लाह तुम्हें देख। तो यानी फिर इंसान का अमल कैसा होगा, उसकी खूबसूरती कैसी होगी? तो एहसान के साथ रुखसत भी करना है तो एहसान के साथ। अब आप देखें, ये दो ऑप्शंस हैं सिर्फ, तीसरी कोई बात नहीं है। या रखो अच्छे तरीके से, या छोड़ दो एहसान के साथ। ऐसा नहीं कहा गया रखो भी और फिर उसके बाद जूते भी लगाओ, इसलिए रखो कि उसके बाद फिर जुल्म करो, नहीं। यही दो ऑप्शंस आदमी के पास है, यानी उसके पास 3 हैज तक, जब औरत को 3 हैज आते हैं, उसके पास इनफ टाइम है ना कि वो सोच ले, अच्छी तरह समझ ले कि उसने अब क्या करना, क्या वो फैसला करता है, इसको रखना है मैंने बीवी को या नहीं रखना, आइदर वन चूज कर ले। वला यहिल्लु लकुम, मर्दों से कहा गया, इन केस तुम उसको रखने का फैसला करते हो, सॉरी छोड़ने का फैसला करते हो, अब आप कहते हो कि भाई मैंने नहीं इसको रखना, अब खत्म है हमारा, तो ला यहिल्लु, नहीं हलाल तुम्हारे लिए, अन के खुदू, तुम ले लो, मिम्मा आतई तुमुहुन्ना शैअन, उसमें से आतई तुमु, दिया तुमने, हुन्ना उनको, शैअन कुछ भी, तुमने कुछ भी उनको दिया है, चाहे सुई है तो, चाहे जायदादें हैं, चाहे मकान उनके नाम कर दिए हुए हैं, चाहे कुछ, आप उसमें से वापस नहीं कुछ ले सकते, कुछ भी नहीं वापस। शैअन से मतलब है छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज वापिस नहीं ले सकते। ये नहीं कह सकते कि वो जैसे अब जैसे हमारे यहाँ औरतों को तो समझ ही नहीं होती ना, वो फिर कितनी शिकायत करती हैं, अक्सर औरतों की जुबान पे देखा है, ये क्या बात हुई इस्लाम के अंदर 3 दफा तलाक 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 कहा तो घर से बाहर खड़ा कर दिए, ये कौन से रूल्स हो गए? भाई आपको पता ही नहीं इस्लाम ने कहा क्या, तो फिर ना आदमी को पता है ना इस औरत को पता, और इल्जाम किस पे लगाया जाता है? इस्लाम पे। इस्लाम ने तो ऐसी बात नहीं कही, आदमी को कहा तुम एक रत्ती बराबर भी चीज इसकी ले नहीं सकते, और यहाँ पे क्या होता है, जहेज तक जो वो साथ लेकर आई वो भी रख लेते, वो भी नहीं देना वापस। हालांकि कहा गया कि जो तुमने दिया उनको, वो तो वो खुद लेकर आई, वो तो अपना लेकर ही जाएगी, वो तो उसके माँ बाप ने उसको दिया था ना गिफ्ट, जब शादी होने लगती तो क्या कहते हैं लड़के वाले, कहते हैं नहीं जो आपकी मर्जी है आप देते, हालांकि ये कितना बड़ा जुल्म है, जो आपकी मर्जी आप दे दें, आपने अपनी बेटी को देना है। असल में कहने का मकसद ये होता है कि हाँ दो, उनको उसी वक्त कहना चाहिए नहीं आपने कुछ नहीं देना, क्योंकि हम बेटी को लेकर आ रहे हैं आपकी, आपने यही बड़ी बात नहीं है कि अपनी बेटी दे रहे हैं आप, हम हमारे घर में सब कुछ है, जो हमारा है वो उसका। आदमी जब लेकर आता है तो औरत का रहना सहना खाना पीना किसके जिम्मे है? लेकिन क्या कहा जाता है, बर्तन तक तुम अपने लेकर आओ। ने मुझे बताया कि इवन ये उन्होंने, यानी स्टोर में जो, यानी वो रजिस्ट्री कराते हैं वेडिंग की जो होती है, तो उसके अंदर उन्होंने बर्तन तक बताए हुए थे कि ये वाले बर्तन हमें चाहिए। तो ये कितना बड़ा जुल्म है कि यानी एक बिस्तर भी वो लेकर आए, कि उसने सोना है तो वो लेकर आएगी, उसने खाना है तो बर्तन लेकर आए, साथ देचकियां साथ लेकर आए, चम्मच साथ लेकर, एक शर्म की बात है उस घराने के लिए जो लड़की के वालदेन से ये डिमांड करे, और वो कहते नहीं हमने तो नहीं डिमांड किया, तो खुद ही दे रहे, खुद ही दे रहे, क्योंकि आप ले रहे हैं तो दे रहे हैं। इस चीज को खत्म होना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि हम जब बेटी ला रहे हैं किसी की, उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, इंसान से ज्यादा कीमत है क्या चीजों की? किसी ने अपने जिगर का टुकड़ा किसी को दे दिया, ये कितनी बड़ी चीज है। और जो लोग ऐसा करते हैं वो ये सोचे कल को उनकी भी बेटी है, उनको भी कहीं बयान है, कैसा उनको महसूस होगा अगर दूसरे भी ऐसा करें। ये एक बुरी चीज है और इसको खत्म होना चाहिए। और अगर हम जो कि दीन को पढ़ने वाले हैं, अगर हम नहीं ये बात समझेंगे तो और कौन समझे? वो कहा गया कि तुमने, बल्कि उसको रुखसत करते हुए साथ कुछ तोहफे तहाइफ दे के भेजो, ये एहसान के साथ रुखसत करना, कुछ उसको दे के भेजो। कहा गया कि कम से कम, उलमा कहते हैं ये कम से कम करो कि कुछ कपड़े, जोड़े कपड़े के दे दो उसको साथ, अगर आप नहीं भी कुछ अफोर्ड कर सकते, लेकिन एहसान के साथ। और यहाँ पे जिस वक्त रुखसत किया जाता है तो किस तरह किया जाता है? कभी आपने किसी को नहीं देखा हुआ एहसान के साथ रुखसत करते हैं? इतने इल्जाम लगाए जाते हैं ताकि हम बरी जिम्मा हो जाए, हम लोगों में मजलूम नजर आए। क्योंकि अगर ये कह देंगे कि कुछ भी नहीं किया, अच्छी तरह रुखसत करेंगे तो लोगों ने कहना इसका ही कसूर था। इतनी इल्जाम तराशियां की जाती हैं और उसको दे के क्या रुखसत करना, उसकी भी चीजें रख ली जाती, आगे अपनी बेटियों को जहेज में दे दी जाती। तो देखें कुरान का, जो लोग आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये इस आयत के अंदर मैं कोई खुद नहीं अपनी तरफ से आपको बता रही, आप खुद आंखें खोल के देखें इन आयात को और फिर देखें कि ये क्या कहती है। जब वो जाने लगे, उसको आपने सोच लिया कि रुखसत करने हैं, अब नहीं इसके साथ रह सकते, तुम नहीं ले सकते जो तुमने इनको दिया है। और बाज दफा बड़ी बड़ी चीजें दी होती हैं, गोल्ड के सेट दिए होते हैं, क्या क्या चीजें दी होती हैं, उस वक्त लोग क्या करते हैं, नहीं ये नहीं हम ले जाने देंगे, ये तो हमने तुम्हें शादी में डाला था, ये तो हमने डाला था ना, तुम अपनी माँ की तरफ वाला ले जाओ, ये हमारा वाला नहीं लेके जाना। अब आप कहें वैसे आप कहते हैं हमने गिफ्ट दिया है ना किसी को, या तो आप उस वक्त कहेंगे भाई तुम रख लो लेकिन है हमारा ही, तुम पहनने के लिए ले लो, आरिया था उधार ले लो, उधार तो नहीं आपने दिया होता शादी पे, आप क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं ना दूसरे को। तो जब आप गिफ्ट दे रहे होते हैं, मेरे ख्याल में वो भी एक दिखावा होता है, क्योंकि अगर वाकई गिफ्ट दिया होता तो गिफ्ट इंसान वापस नहीं लेता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तोहफा दे के वापस लेने वाला कैसा है? अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसी उसकी मिसाल दी है, फरमाया जैसे कुत्ता अपनी कै, अपनी उल्टी, अपनी वॉमिट को खुद चाट ले, ऐसा है। अब कौन है, कितने लोग हैं जो ऐसा काम करना चाहेंगे, लेकिन देखा क्या गया, कहीं रिश्ता कायम करते वहां पे कुछ डाल दिया, उसके बाद थोड़े दिन बाद मंगनी तोड़ दी, अब सारी चीजें वापस ले रहे हैं उनसे। क्यों? आपने तो गिफ्ट दी थी, गिफ्ट तो नहीं आप ले सकते, या तो सोच समझ के गिफ्ट दिया करें। अब जब दे दिया ना एक बार, उसको भूल जाएगा, वो अब आपका नहीं रहा। तो नहीं कुछ भी ले सकते, इल्ला एक्सेप्शनल केस है, कब ले सकते हैं आप, एक एक एक्सेप्शन है उसमें। वो क्या एक्सेप्शन है? अय्याहाफा कि वो दोनों डरे, अल्लाह युकीमा हुदूद अल्लाह, कि वो कायम नहीं रख सकेंगे अल्लाह की हदों को। यानी औरत भी कह रही है कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है इस आदमी के साथ रहना, और आदमी भी समझता है कि मैं नहीं रह सकता, लेकिन अब वो क्या करे। उसने ये एक मिसाल हमारे सामने की है, देखी थी कि एक आदमी ने जिन जिस घर में वो रहते थे उसी घर को औरत के नाम लगा दी, और उस आदमी के पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। अब क्या था, अब वो कहता है अगर मैं इसको तलाक देता हूं तो मैं किधर जाऊंगा, क्योंकि ये तो औरत के नाम है। तो ऐसी सूरत में आदमी भी फंस जाता है, अब निभा भी नहीं हो रहा, एक दूसरे के हकूक भी नहीं अदा रहे, अल्लाह युकीमा हुदूद अल्लाह के, अल्लाह की हदें जो है वो दोनों नहीं कायम रख पा रहे, वो उसको नहीं उसका हक दे पा रहा, वो उसको नहीं उसका हक दे पा रही, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चलना चाहते, नहीं रहना चाहते, लेकिन आदमी कहता है कि मैं कैसे तलाक दूं, मैंने इतना कुछ दे जो दिया हुआ इसको, अब वो भी नहीं तलाक देता, अब इसी तरह फंसे हुए हैं दोनों। तो कहा गया उस सूरत में क्या है, फिर आगे अभी बात आ रही, फइन खिफ्तुम, अगर तुम्हें अंदेशा हो, तुम्हें कौन, किसको कहा जा रहा है, यानी जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी देख रहे हैं, या उसके रिश्तेदार हैं, या जो काजी वक्त है, या जो वली है, या जो माशरा है वो भी देख रहा है, वो भी डरते हैं, अल्लाह युकीमा हुदूद अल्लाह, वो भी ये समझ गए कि ये दोनों हदूद नहीं कायम कर सकते अल्लाह, फला जुनाह अलैहिमा, तो नहीं कोई गुनाह उन दोनों पर, फीमा इफ्तदत भी, कि फीमा इस चीज में, कि इफ्तदत भी, वो औरत जो है फिदिये में दे दे कुछ, वो औरत को इतना कुछ जो दिया हुआ है तो वो औरत अपने पास जो कुछ है उसमें से कुछ दे के और कहे कि तुम मुझे तलाक दे, तो यानी खुला ले ले वो औरत। अब वो कहती है कि मेरी जान छूट जाए तो ठीक है ये मैं ले लेती, तो फला जुनाह नहीं हो, इन दोनों पे फिर कोई गुनाह नहीं, ना उसको देने में ऐसा उस पे कोई गुनाह, ना आदमी को लेने में गुनाह। वरना पहले क्या बताया, ला यहिल्लु लकुम, तुम्हारे लिए हलाल ही नहीं, यानी ये लेना हराम है तुम्हारे लिए, कि अगर तुम उसको जो दी हुई चीजें हैं वो वापस लेते हो तो ये तुम्हारे लिए क्या है, हराम माल है। लेकिन इस सूरत में तुम ले सकते हो, दोनों की नहीं चल रही, नहीं ना औरत उसको पसंद करती है या उसके हकूक नहीं दे पा रही, ना आदमी उसको पसंद करता है, या औरत नहीं रहना चाहती, आदमी कहता है मैं नहीं तलाक देना चाहता, तो अभी औरत कुछ दे के बदले में, इफ्तादत मतलब बदले में कुछ दे के और अपनी जान छुड़ा लेती, तो ऐसा माल लेने में आदमी पे फिर हराम नहीं होगा, उसके ऊपर गुनाह नहीं होगा, अदरवाइज उसके लिए गुनाह है वो लेना, उसके लिए हराम है वो लेना। और ये एक आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ तो आपको और भी बात समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। जैसे एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे और उनका नाम था साबित बिन कैस, उनकी बीवी थी। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी कि मैं साबित के घर में नहीं रह सकती, या वो या मैं, या वो नहीं या मैं नहीं, मतलब बस मेरा उसके साथ गुजारा नहीं हो सकता। असल में क्या बात थी कि ये खुद ना बहुत खूबसूरत थी, इनका नाम हबीबा था, ये खुद बहुत खूबसूरत थी और साबित बिन कैस जो थे वो गुड लुकिंग नहीं थे। तो वो कहती थी कि मैं इसकी तरफ देखती हूँ, मुझे जैसे एक हस्बैंड से एक अट्रैक्शन होती है या कुछ है, तो मुझे इससे कोई वो नहीं है, मैं इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती। ये सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। तो फिर आपने साबित से फरमाया, उनको बुलाया, उनको फरमाया कि तुम्हारी बीवी कुछ कह रही है, तो यानी कोई शिकायत कर रही है, या वैसे उनके दीन में कोई नहीं थी, वो कहती मुझे इसके दीन में कुछ नहीं है, कोई ये नमाज भी है, कयामुल लैल भी करता है, रोजेदार भी है, लेकिन बस मैं इसे, मेरे उसकी तरफ देखने को जी नहीं चाहता। ऐसा हो सकता है, मुमकिन हो सकता है ये बात। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे खाविंद ने जो तुम्हें दिया है क्या तुम वो वापस देने पे आमादा हो? तो वो लगी कि हाँ, उन्होंने मुझे बाग दिया है और मैं वो बाग देने के ऊपर राजी हूं। तो वो उन्होंने बाग वापस दे दिया और इस तरह यानी अपने खुला ले लिया। ठीक है, तो आदमी उतना ले सकता है जितना कि उसने मेहर में दिया हुआ है, इससे ज्यादा भी लेना वो भी मकरूह कहा जाता है, जितना उसने दिया हुआ उससे भी ज्यादा लेना। तो इसमें इतनी इजाजत है, तिल्क हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, फला तअतदूहा, तो अल्लाह की हदों को क्रॉस ना करो, तजावुज ना करो, क्योंकि होता क्या है कि ऐसे मामलात में बहुत ज्यादा वायलेशन होती है और मियां बीवी एक दूसरे के हुकूक मार लेते हैं, बाज दफा औरत, बाज दफा आदमी, बाज दफा औरतें बहुत कुछ लिया होता है और फिर आदमी को इस कदर सताती हैं कि वो तलाक दे, और फिर उसके बाद कुछ भी आदमी को वापस नहीं जाता, वो सड़क पे आ जाता है। दूसरी तरफ भी होता है कि आदमी इतना सताता है औरत को कि ये खुला ले ले, ताकि जो मैंने इसको दिया था वो वापस देगी, तो फिर ये आजाद होगी, फारिग होगी। खुला क्या चीज होती है कि औरत, देखिए आदमी को अल्लाह ताला ने हक दिया है ना, अगर अलग होना है तो आदमी के पास क्या हक है, तलाक देने का। ऐसा नहीं कि औरत के पास आजाद होने का या इस रिलेशनशिप से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जो लोग समझते हैं ना कि बस वो आदमी को तो तलाक का हक है, औरत को क्यों नहीं हक, औरत को तलाक का हक नहीं, इसको खुला का है। खुला और तलाक में थोड़ा डिफरेंस है। खुला के अंदर क्या होगा कि अदालत में जाया जाएगा, वहां जाके काजी के सामने अपना केस पेश किया जाएगा, औरत दलायल देगी कि मैं क्यों इस आदमी से अलग होना चाहती, फिर काजी उसको देखेगा, फिर उसके बाद वो कहेगा कि हाँ ये जेन्युइन रीजन है और इस औरत को आजादी दी जाए, यानी उसको खुला दे देता है। अब इसमें ऐसा क्यों है, औरत को क्यों नहीं ऐसे कि वो भी तलाक 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 कह के वो भी आजाद हो जाए, इसलिए कि औरतें ज्यादातर जज्बाती होती हैं और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती। देखिए, जब मैंने आपको लास्ट टाइम हेयर्स की बात बताई थी तो मैंने आपको बताया था ना कि उस वक्त हार्मोनल चेंजेस ऐसे आ रहे होते हैं कि औरत बार दफा रोने शुरू हो जाती है, बार दफा गुस्सा करने लगती है। वो फिजिकली तो वीक होती है, वो मेंटली भी इमोशनली भी वीक हुई होती है। ऐसे में कोई उल्टा सीधा कदम उठा लेना, उससे उसको खुद नुकसान होगा और बाद में पछताएगी। तो इसलिए औरत को ये चीज नहीं दी गई, आदमी को ये समझा गया कि वो ज्यादा मुदब्बिर होगा, ज्यादा अकल से काम लेगा, उसके अंदर ठहराव होगा, उसके अंदर हिकमत होगी, और वो इस अपने राइट को एक्सरसाइज करेगा ओनली जब बहुत एक्सट्रीम कोई सिचुएशन हो। लेकिन अगर आज आदमी भी उसी लेवल पे उतर आए जिस पे औरतें हैं, फिर क्या? अल्लाह ताला ने तो उनको ये हक इसलिए दिया था कि वो अकल से काम लेते हुए जज्बात में ना आए। लेकिन अगर वो भी उसी तरह काम करने लगे तो फिर वो इसीलिए तो फिर नुकसान होता है ना, इसीलिए प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। तो औरत के पास भी हक है कि वो अपनी जान छुड़ा सकती है उस रिलेशनशिप से, लेकिन उसके लिए रास्ता क्या? खुला का। और आदमी के पास रास्ता कौन सा है? तलाक का। दिस इज द डिफरेंस। अब इसके अंदर इतना वावेला करना, हाँ औरत को क्यों नहीं हक क्या तलाक का? भाई इसमें कोई हिकमत है, ठीक है? और खुला जो होता है वो तलाक नहीं होती, वो फस होता है, यानी कैंसल हो जाना निकाह का। तो फिर वो कोर्ट जो है वो कैंसल कर देगी उस निकाह को, खत्म हो गया वो निकाह को। मैंने उसकी बताई भी थी, इद्दत भी बताई थी, आपको बताया भी था कि उसके अंदर भी बाद में शादी हो सकती है, अगर किस बाद में दोनों पछताएं और सोचें शादी भी कर सकते हैं। देखिए, हमें ये पहले समझना है ना कि इस हद तक नौबत आनी ही नहीं चाहिए। जब इस्लाम की तरफ देखें तो हम सूरह निसा में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जब भी आदमी और औरत में कोई डिफरेंसेस हो तो एक हकम बिठाया जाए, एक हकम उसकी तरफ से, एक हकम उसकी तरफ से। यानी एक आदमी उस तरह जो मुनसिफ हो, जो इल्म वाला हो, जिसमें कुछ समझदारी हो, एक औरत की साइड का, एक आदमी की साइड का बिठाया जाए और वो मामले को तय करने की कोशिश। पहले तो मर्द औरत खुद आपस में तय करने की कोशिश करें, अगर वो नहीं कर सकते तो इस तरह अनबायस्ड, यानी कि माँ बाप बैठ गए, माँ बाप तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि वो फेवर ना करें अपनी औलाद को, वो तो क्योंकि वो माँ बाप है ना, तो वो नेचुरल बात, इसलिए हकम कहा गया। कोई भी एक अनबायस्ड आदमी जो जानिबदार ना, बिल्कुल गैर जानिबदार होके जो बात को समझ के कोई बात कंक्लूजन तक पहुंच सके, कोई इमाम बिठा लें, कोई स्कॉलर है, कोई कोई, तो वो दोनों तरफ से बैठे, दोनों की बात सुने और उनको समझाएं। ना आजकल काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग कराई जाए, अगर फिर भी नहीं मामला हल होता और इस नहज पे पहुंच गया है कि अब कोई रास्ता नहीं है, दोनों हर्ट कर रहे हैं अपने आप को भी, एक दूसरे को भी, और गुनाहगार हो रहे हैं। बस ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिसमें लोग गुनाहगार हो रहे थे उस रिलेशनशिप में रह के, क्योंकि वो हकूक अदा, जैसे इन्होंने आके कहा, हबीबा ने, कि मेरे इसकी तरफ देखने को भी जी नहीं चाहता, मैं इसकी शक्ल नहीं देख सकती, तो वो क्या हकूक फिर अदा करें? जबकि इस्लाम के अंदर निकाह किस लिए है? निकाह इसलिए है कि इस रिश्ते में रहकर अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारियां आयद की हैं उनको पूरा किया जाए और उस तरह से अल्लाह को राजी किया जाए, एक उम्मत, एक बेहतरीन उम्मत को रेज किया जाए। लेकिन अब अगर नहीं चल सकता, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि जरूरी है कि किसी का कसूर ही होगा और किसी ने किसी को फिंगर पॉइंटिंग ही करनी है कि इसका ये कसूर था इसलिए, जरूरी तो नहीं है। हजरत जैद और हजरत जैनब का नहीं बनी थी आपस में, बाज दफा मिजाज नहीं मिलते, तबीयतें नहीं मिलती, फॉर वट एवर रीजन, कुछ भी हो सकता है। तो तब इस्लाम वो रिलीजन नहीं है जिसमें औरत को मर्द के साथ सती कर दिया जाए कि तेरा आदमी मर गया तो तू भी इसके साथ ही जल, अब और ये रिश्ता नहीं लेकिन टूटेगा, ऐसा नहीं है। अजीब बात है वैसे इनके रिलीजन में कि ये चीजें की, उनके रिलीजन में तो यही है, अब उन्होंने चेंज कर दिया अपने लॉज में, वहां पे तो अलग बात है, लेकिन उनके रिलीजन में तो यही है कि वो तो सती होगी उसके साथ। तो जो इतना अटूट रिश्ता है, अगर ये तो औरत मर जाए तो आदमी क्यों नहीं उसके साथ जल जाता था? आदमी का भी तो उतना ही रिश्ता है, लेकिन औरत को जलाया जाता था। तो इस्लाम ऐसे नहीं कहता, इसी तरह ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में ये कैथोलिक्स में तो तलाक नहीं है, आप नहीं दे सकते, खत्म नहीं कर सकते। अब उन्होंने भी अपने तो बहुत कुछ चेंज कर दिया, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं, ना इस्लाम मर्द को ना औरत को निकाह में बंद के रहने पे मजबूर करता है। हाँ ये अलग बात है, जो औरत जानबूझ के तलाक ले बगैर किसी जेन्युइन रीजन के, बस ऐसे ही। आजकल औरतों को आजादी का भी बहुत शौक हो गया कि मैं तो आजाद रहना चाहती हूँ, और ऐसे आदमी को तंग करती है या किसी की भी वो नहीं बर्दाश्त कर सकती कि कोई और मेरे मुझे कोई बात कहे कि ये कर लो या नहीं, नहीं हदूद में रहते हुए, या मैं किसी की नौकरानी नहीं हूं, मैं क्यों खिदमत करूं या मैं क्यों उसकी बात सुनूं, और वो ऊपर होके रहना चाहती है, इस वजह से वो अब डाइवोर्स चाहती है। तो ऐसी औरतें जो बगैर किसी जेन्युइन रीजन के डाइवोर्स लेती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस औरत ने बगैर किसी तंगी और जरूरत के अपने खाविंद से तलाक मांगी उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। अबू दाऊद तिर्मिजी इब्ने माजा ये सब में रिवायत। तो ऐसे ही बिला वजह बगैर किसी जरूरत के बगैर किसी तंगी के खाम खा बस ऐसे ही एक आजादी का भूत सवार हो गया, बस नहीं बर्दाश्त होता कि कोई साथ रहे या कोई मुझे कुछ कहे करने को, तो ये दुरुस्त नहीं है। मगर इसके ऑपोजिट ये भी सही नहीं है कि ये कोई स्लेवरी चल रही है, ये भी नहीं है। औरत मार खा रही है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटल टॉर्चर हो रही है, वो साइको हो गई भी है लेकिन उसने बस रहना वही। तो ऐसी जबरदस्ती इस्लाम ने नहीं की। हाँ ये अलग बात है, लेकिन इसमें भी बात याद रखें, ये अलग बात है कि औरत समझती है कि अगर यहां से जाऊंगी तो मेरा और कोई ठिकाना नहीं है, उसकी और मजबूरियां हैं, कोई वो बच्चों को समझती है कि इन बच्चों का फिर क्या होगा, ये होगा, वो अपनी वजह से कोई मजबूरियां उसकी हैं जिसकी वजह से वो उस एब्यूसिव रिलेशनशिप में रहना चाहती है, ये अलग बात है, ये उसकी अपनी मर्जी। मगर इस्लाम को ना फिर कहो कि इस्लाम कहता है ये, इस्लाम नहीं आपको कहता कि आप जियो या मरो आपका जनाजा इसी घर से उठना है, ये हिंदुओं की चीजें हैं, ये जो सती का कॉन्सेप्ट है और ये आपका जनाजा इसी घर से उठना है ना, ये हिंदुओं की बातें हैं, ये भी एक्सट्रीम है, ये भी गलत है, दोनों ही चीजें गलत हैं। वो जो बगैर वजह के लेती है वो भी गलत है और ये भी गलत है कि तूने अब मरना जीना इसी घर के अंदर है, बस यहीं से तेरा जनाजा उठे, माँ बाप ने कह दिया, अब जो मैं कभी जा ही नहीं सकती, कभी वापस हो ही नहीं सकती, ये चीज ये कतन गलत है। तो अब हमें देखना चाहिए इसके बीच का भी रास्ता है ना, ना तो ये ठीक है ना वो ठीक है, ना तो ये ठीक है कि बात बात पे जरा सा मसला हुआ, जरा सा कोई चीज नहीं तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, मैं हम साथ ही नहीं रह सकते। उसी तरफ ये है कि जो मर्जी हो जाए, अब चाहे पागल हो जाए औरत, वो उसने रहना वही है।